दोस्तों SBS हिंदी पर आज बात करते हैं कुछ हंसने हंसाने की, और इस बात के लिए आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ एक खास व्यक्ति से। अब वो कौन है वो आप खुद ही पहचानिए।
जब हम इंडिया में बड़े हो रहे होते हैं ना, हमारे साथ एक ना हमारे पेरेंट्स हमको हमेशा एक बात बोलते हैं कि तुम्हारा तो अभी आसान है पढ़ाई, हमारे टाइम में पता है कितना मुश्किल होता था। मतलब मुझे आज तक नहीं समझ में आया सबके पेरेंट्स की जाना स्कूल इतना दूर क्यों होता होता था। लेकिन मेरे फादर मेरे को कहते कहते मैं 7 किलोमीटर रोज पैदल जाता था स्कूल। और मैं उनको बोला, मैंने कहा डैडी आप अमृतसर में रहते थे, अमृतसर शहर ही 4 किलोमीटर का था 1955 में, आप जलंधर क्यों पढ़ने जाते थे रोज। लेकिन मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि सबके स्कूल इतने दूर क्यों होते थे उस टाइम। मतलब हिंदुस्तान में उनकी टाउन प्लानिंग खराब होती थी क्या, कि जब किसी को स्कूल के लिए लैंड लेनी होती थी तो बोलते थे ना 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 शहर में नहीं लेंगे, कोई टापू ढूंढो, कोई आइलैंड जिसके आसपास चारों तरफ नदियां हो, वो सभी तो 7-8 मगरमच्छ भी छोड़ देना। मतलब सभी के स्कूल दूर होते थे, मुझे आज तक नहीं समझ में आया।
जी हाँ, ये आवाज है फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन अमित टंडन की। अमित जी, वेलकम टू SBS हिंदी रेडियो।
थैंक यू सो मच, इट्स माय प्लेजर।
अमित जी, ये तो हम कौन हमारे श्रोताओं ने आपको रेडियो पर सुना, लेकिन बहुत जल्द वो आपसे रूबरू भी हो पाएंगे। आप बहुत जल्द ऑस्ट्रेलिया भी आ रहे हैं, तो कैसी है तैयारी, क्या खास बात ला रहे हैं?
जुलाई मिड से शुरू हो रहा है जो टूर ऑस्ट्रेलिया का, तो काफी एक्साइटेड हूँ। हम 7-8 शहर कर रहे हैं, सिडनी में 2 शोज कर रहे हैं और बाकी सब जगह भी मतलब एक शो तो हो ही रहा है, तो काफी एक्साइटेड हूँ वहाँ करने के लिए। क्योंकि अभी UK भी करके आया हूँ तो NRI के साथ एक अलग उनके थोड़े इश्यूज कुछ मामलों में अलग होते हैं, तो थोड़ा सा मैं NRI से रिलेटेड बात करता हूँ तो वही करूँगा थोड़ा, और बाकी तो स्टोरीज किस्से कहानियां जो हमारे हिंदुस्तानी घरों की होती हैं वो लेके आऊंगा, तो दैट इज प्राइमरीली व्हाट आई एम प्लानिंग।
अमित जी, वैसे देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो NRIs होते हैं वो भारत से दिल से जुड़े रहते हैं, उनकी कर्मभूमि कहीं होती है। हाँ। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस बारे में?
जो लोग फर्स्ट जनरेशन तो काफी क्लियर होते हैं, उनका तो अटैचमेंट होता है इंडिया की तरफ। सेकंड जनरेशन को कंफ्यूज कर दिया जाता है क्योंकि उनको पालते और बड़ा वहां पे करते हैं, पर उनको कहते हैं कि इंडियन कल्चर संभाल क्या हो, जो मुझे लगता है थोड़ा सा बेचारों के साथ गलत हो जाता है। क्योंकि ये तो फर्स्ट जनरेशन तो अपना चाइल्डहुड बता के आई है इंडिया में, बट सेकंड जनरेशन बेचारे कंफ्यूज हैं कि हमें स्कूल भेज रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में पर कह रहे साथ में हिंदी भी आनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में उनके लिए थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल होता है।
और अमित जी, जैसे कि हम फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन की बात कर रहे थे, तो क्या आपके फैमिली में भी कॉमेडी पहले से ही आ रही है या आप पहले इंसान है जो इस क्षेत्र में गए हैं?
नहीं नहीं, मेरी फैमिली में ये पहली बार हुआ है। अभी तक घर वाले काफी कंफ्यूज हैं कि ये हुआ क्या है हमारे घर में, क्योंकि हमारे घर में अभी तक किसी ने ऐसा कुछ करा नहीं है, सब लोग इंजीनियर और वो सब। मैं भी इंजीनियर और MBA हूँ बाय द वे, IIT वगैरह में गया हूँ, बट उसके बाद सब लोग नॉर्मल करियर्स में हैं या ज्यादा से ज्यादा किसी ने हिम्मत करी है तो बिजनेस करा है। तो मेरा थोड़ा सा अलग है, अभी घर में इस बात पर रिसर्च हो रही है कि ये हुआ कैसे।
और जब आपने ये फैसला सुनाया कि अब मैं कॉमेडियन बनने जा रहा हूँ, मैं लोगों को हंसाने का काम करूंगा, दिल थाम के बैठिए, पेट पकड़ कर बैठिए, तो घर से या यू नो सोशल सर्कल में क्या रिस्पांस था?
सोशल सर्कल में पहले तो लोग सीरियसली नहीं लेते थे, ठीक है, लोगों को मजाक लगता था। अब वो लोगों को, अब आप बताओ और लोगों को मजाक लगे तो आदमी को लगता है एज अ कॉमेडियन तो वैसे ही मेरा काम हो गया, बट ऑनेस्टली लोगों को थोड़ा लगता था कि चल ट्राई करना चाहता है कर ले जब तक घर की रोटी खुद चला रहा है। तो मेरा ये था कि रोटी मैं खुद चला रहा था, ये बच्चों को पाल रहा था, तो उनको था कि बस मेरे से पैसे मत मांगियो, बाकी जैसे मर्जी कर, वापस अपना बिजनेस मत बेचियो, दूसरा उनको ये था। तो उसके अलावा सब सही था। बाकी हाँ, शुरू में मतलब आसान नहीं होता क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहले दिन आप स्टेज पे जाते हो और लोग हंसने लग जाते हैं, काफी स्ट्रगल होता है। तो जो पिछले 1-1.5 साल का लोगों को सक्सेस दिखता है उसके पीछे 5-6 साल का स्ट्रगल भी है, जिसमें घर वालों की भी काफी कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि मतलब जब भी तुम परफॉर्म करने जाते हो तो जनरली वीकेंड पे होता है, फ्राइडे सैटरडे संडे टाइप, तो बच्चों के लिए थोड़ा सा वीकेंड खराब होता है उस कारण से, और घर वाले मतलब शुरू में कोई सीरियसली नहीं लेते, उनको लगता है अभी 4 दिन धक्के खाएगा और आ जाएगा, उनको बस ये होता है कि भाग के बॉम्बे में चला जाइए। वो मैंने नहीं किया तो वो ठीक है।
अमित जी, जैसे कि आपने कहा कि सक्सेस के पीछे स्ट्रगल बहुत होती है, आपसे जानना चाहेंगे एज अ कॉमेडियन के तौर पे इतनी यू नो सक्सेस पाने के पहले क्या स्ट्रगल रही, कोई कुछ सक्सेस सीक्रेट अगर शेयर कर सके हमारे ऑडियंस के साथ।
आई थिंक सक्सेस सीक्रेट जो है वो बेशर्मी होती है मेरे ख्याल में सबसे बड़ी, मतलब जब आदमी ढीठ होता है ना तभी सक्सेसफुल हो पाता है, मतलब क्योंकि जैसे हम कॉमेडी भी करते हैं तो कॉमेडी क्या होता है शुरू में हम करते हैं पब्स वब्स में करते हैं तब कोई सुन भी नहीं रहा होता कई बार, और वो बड़ा मुश्किल है कि जैसे अब आप गाना गा रहे हो तो आप आंखें बंद करके गाना गा सकते हो अगर कोई नहीं भी सुन रहा, बट कॉमेडी जब आप जोक सुना रहे हो स्टेज पे और लोग खाना खा रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है आदमी के लिए, तो शुरू में वो स्ट्रगल बहुत रहती है कि कोई हंस नहीं रहा है, लोग खाने में लगे हुए हैं या कोई कह रहा है कि भैया बस करो बंद करो और म्यूजिक लगवाते हैं या ये वो, तो उस टाइप का बहुत स्ट्रगल रहता है। फिर शुरू में हमारा टाइमिंग सेट नहीं होता है, ठीक है, तो मतलब कॉमेडी में टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो मतलब सारा सेट करने के लिए आप हर तरीके के, उस टाइम तो ये होता है कि हमें सिर्फ स्टेज टाइम चाहिए, चाहे फिर वो प्राइवेट पार्टी है चाहे वो कॉर्पोरेट शो है चाहे वो पब्स है, तो हम हर टाइप के शोज उठाते हैं, और अगर आपको हिंदुस्तानी पब्स का पता हो तो वहाँ हर तरीके के लोग आते हैं, तो उसमें बेशर्मी बहुत चाहिए आदमी को कि कोई बात नहीं आज नहीं चला या कोई बात नहीं आज किसी ने भी नहीं सुना, कोई बात नहीं लोगों ने ध्यान नहीं दिया या लोगों ने उतार भी दिया स्टेज से, कल सुबह फिर चलना है स्टेज पे, तो वो जो बेशर्मी है वो काफी चाहिए, भीतपना चाहिए, कमिटमेंट चाहिए। कई बार आप 5-5 मिनट का स्पॉट मिलता है जिसके लिए आपको 3-4 घंटे ड्राइव करके जाना पड़ता है दूसरे शहर, तो वो भी करा है और वो सभी कमिटमेंट करते हैं मेरे ख्याल में।
और अमित जी, जाते जाते एक बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन, हाउ अमित टंडन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर कॉमेडियंस?
ये तो ऑनेस्टली तो ऑडियंस बेटर बता सकते हैं, पर मेरा जो कोशिश होती है वो ये होती है कि जब भी मैं कोई जोक करूं तो लोग उस जोक को घर लेके जाएं, वो उस जोक को जिए, मतलब जब मैं जोक करता हूं जैसे हम पहले बात कर रहे थे आपके साथ बिफोर द इंटरव्यू कि वो हमारे साथ हो चुका है या अगले दिन सुबह फिर से होगा, तो मेरे जोक्स जोक्स नहीं होते, वो आप ही की लाइफ से उठाए हुए कुछ ऐसे यू नो पीसेस होते हैं जो आप रोज जी रहे हैं, चाहे जब मैं मिडिल क्लास की बात करता हूँ या हस्बैंड वाइफ की बात करूँ, तो दैट इज माय अटेम्प्ट कि जब मैं बात करूं तो लोगों को लगे कि ये मेरे घर की बात कर रहा है, ये मैं हूं, सो वही एक कोशिश रहती है कॉमेडी में।
How difficult to keep your scripts ready all the time and fresh?
हाँ, काफी काम होता है ये ये रोज रोज थोड़ा सा बैठ के लिखना पड़ता है, रोज आपको अपनी आंखें और कान खुले रखने पड़ते हैं ताकि आप नया नया मटेरियल सोच सको, आपकी प्राइवेट लाइफ थोड़ी खराब भी होती है, जैसे अब हमारी आपस में लड़ाई भी हो रही होती है तो मेरी वाइफ मेरे ऊपर गुस्सा हो रही होगी और सडनली बीच में मेरे अंदर का कॉमेडियन सोच रहा होगा कि यार कितना अच्छा मटेरियल है ये तो मैं स्टेज पे भी कर सकता हूँ, तो फोकस लड़ाई से हटके मेरा राइटिंग में चला जाता है, तो ये इश्यूज होते हैं थोड़े से क्योंकि अब हम हर जगह मटेरियल ढूंढते हैं, जब हम होटल में घुसते हैं तो मटेरियल ढूंढते हैं, घर में होते हैं तो मटेरियल ढूंढते हैं, नहा रहे होते हैं तो मटेरियल ढूंढते हैं, तो वो थोड़ी एक आदत है जो डालनी पड़ती है, थोड़ी बुरी भी है आदत कई बार कई रीजन के लिए, बट ठीक है पार्ट ऑफ द जॉब।
अमित जी, हम आशा करते हैं कि जब हम दोनों बातचीत कर रहे थे इसमें भी आपको कुछ मटेरियल मिला हो और हम ऑस्ट्रेलिया में जब आपसे मिलें तब उसमें से भी उसका भी मजा हम ले सके।
रेडियो पे तो जरूर कुछ ना कुछ निकलेगा, रेडियो पे तो काफी कुछ है।
अमित जी, आपके टाइम के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हम दिल से चाहते हैं कि आपकी ऑस्ट्रेलिया की टूर बहुत सफल रहे।
थैंक यू, मैं भी काफी एक्साइटेड हूँ ऑस्ट्रेलिया के ट्रिप को लेके, सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द ट्रिप नाउ।